मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 18 दिसंबर 2015 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं अनंत कुमार मोरेश्वर, आप नांदुरबार से हैं, राहुल कुमार श्रीवास्तव कोलकाता से हैं, स्नेहा शीश छोतरे चंडीगढ़ से हैं, सुनील शेखावत आप झुंझुनू राजस्थान से हैं, और चांदीदान चरण जोधपुर से हैं। तो अनंत, राहुल, स्नेहाशीष, सुनील और चांदी, आप पांचों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी मैंने जिन साथियों के नाम लिए हैं और उनके स्थान के भी नामों की मैंने चर्चा की है, इसमें से चूंकि कुछ सरनेम बिल्कुल नए से हैं, स्थान के नाम भी मुझे बिल्कुल नए मालूम पड़ रहे हैं, इसलिए मैं चूंकि अंग्रेजी में ये सब लिखा हुआ है और आप जानते हैं कि अंग्रेजी में वही नहीं लिखा जाता जो बोला जाता है, या जो वही नहीं पढ़ा जाता जो लिखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में उच्चारण में दोष हो सकता है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, और यदि उच्चारण में गलती हुई ही होगी तो उसे आप लोग अपने अपने स्तरों पर सुधार लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, एक सूचना जो लगभग हर शुक्रवार को दोहराई जाती है, यहां मैं फिर से उसी एक तरीके से कह लीजिए उसी का अनुपालन कर रहा हूं, वो ये कि आप जानते हैं सैटरडे और संडे को डेली ऑडियो नहीं आता है। हाँ, लेकिन जो नॉलेज सेंटर है उस पर आपको प्रेस क्लिपिंग्स हमेशा की तरह ही अवेलेबल होंगी, साथ ही नॉलेज सेंटर पर ही आपको योजना और कुरुक्षेत्र के आर्टिकल्स अवेलेबल होंगे। ये आर्टिकल्स हिंदी योजना कुरुक्षेत्र के भी होंगे और इंग्लिश योजना कुरुक्षेत्र के भी होंगे। जहां तक स्पेशल ऑडियो गाइडेंस का सवाल है, तो फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच और थर्ड बैच के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भी उनको उसी सिस्टम के तहत प्रोवाइड कराया जाएगा जिस सिस्टम के तहत उन्हें अभी तक मिलता रहा है। तो मित्रों, अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर। फ्रेंड्स, नो डाउट कि मैं इस बात के लिए आप लोगों की तारीफ करूंगा कि अभी तक मुझे मंडे का जो एक प्रयोग के तौर पर इस सप्ताह एक नए तरीके का ऑडियो प्रोवाइड किया गया था, इसके बारे में बहुत अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं, और मैं अगर परसेंटेज में बात करूं तो लगभग 99% आप सब नौजवान स्टूडेंट्स का यही कहना है कि उस प्रयोग को ही कंटिन्यू किया जाए। इसके लिए मुझे अभी तक मेल मिल रहे हैं और उनकी संख्या भी काफी कुछ है, तो निश्चित रूप से यह एक काबिले तारीफ है कि आप लोग अभी भी उस मंडे के ऑडियो को याद कर रहे हैं और उसके बारे में अपने जो विचार हैं, अपना जो मत है, उससे मुझे अवगत भी करा रहे हैं। लेकिन मित्रों, इसी के साथ ही इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष यह है, हम इसकी अब थोड़ी सी एनालिसिस कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरी इस एनालिसिस को बिल्कुल भी अन्यथा नहीं लेंगे। आप लोगों को ध्यान होगा कि जैसे ही ये मंडे का ऑडियो मैंने डाला था और उसके बाद ही अचानक फीडबैक आने शुरू हो गए थे और काफी बड़ी संख्या में फीडबैक आए थे। फिर मैंने ट्यूसडे या वेडनेसडे को ही एक तरह से निर्णय की घोषणा कर दी थी कि हाँ, इसको ठीक है, कंटिन्यू रखा जाएगा। बहुत खुशी की बात है कि अभी भी मुझे फीडबैक मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, तो मैं आप ये मत समझिए कि मैं उसे अन्यथा ले रहा हूं या उसके प्रति कोई नकारात्मक टिप्पणी कर रहा हूं। मैं इसके माध्यम से आप लोगों को एक ताकत से परिचय कराना चाह रहा हूं। मित्रों, जो हमारे हम जो कुछ भी एक्शन करते हैं बाहरी तौर पर, जो हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो हमारा छोटा से छोटा व्यवहार ही क्यों ना हो या बड़ा से बड़ा निर्णय क्यों ना हो, उन सभी हमारे एक्शंस में जो हमारे थॉट्स हैं वो तो रिफ्लेक्ट होते ही हैं, और उसके साथ ही साथ हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है या कह लीजिए दिमाग की जो शक्ति है, वह भी उसमें रिफ्लेक्ट होती है। इस मायने में अगर मैं कहूं तो इसे मैं सच पूछे तो तत्काल का जादू कहना शायद ज्यादा पसंद करूंगा और इस तरह के शब्द आप सबको ज्यादा अपील भी करेंगे। तत्काल के जादू का मतलब यह है फ्रेंड्स कि जैसे अगर कोई भी काम हुआ है और उसके बारे में आपको प्रतिक्रिया देनी है या कोई भी काम करना है और उसे आप अभी कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होना चाहिए हमारे दिमाग में कि हम इसे अभी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम इसे टाल क्यों रहे हैं, एक घंटे के लिए, एक दिन के लिए, एक सप्ताह के लिए या कितने भी वक्त के लिए, लेकिन हम अभी उसे कर क्यों नहीं रहे हैं। ये मुझे लगता है मित्रों कि हम सबके दिमाग में, चाहे हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हों, चाहे अपनी जिंदगी की यात्राओं पर हों या किसी भी चीज के लिए जद्दोजहद कर रहे हों, हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। और सच पूछे तो मैं जो अभी सवाल आपसे कर रहा हूं खुद से ही करने के लिए कि आप सबको अपने से ये प्रश्न करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं मेरे जो मंडे का जो स्पेशल ऑडियो था जिसको अब मैं नाम दूंगा, हम स्पेशल ऑडियो तो नहीं कहेंगे क्योंकि स्पेशल ऑडियो के तहत हम ऑलरेडी जो अपने बैचेस के स्टूडेंट्स हैं उनको ऑडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ हम नाम देंगे इसको, बेहतर होगा कि आप लोग कुछ नाम सुझाएं। उसमें भी मैंने ये प्रश्न उठाया था कि आप खुद से ये प्रश्न कीजिए कि कौन आपको रोक रहा है, तैयारी करने से कौन रोक रहा है, जो करना चाहिए उसको करने से कौन रोक रहा है। यहां भी लगभग लगभग वही प्रश्न है। प्रश्न यह है कि सोमवार को ऑडियो सुनने के बाद वो कौन सी ऐसी चीज हुई जिसने आपको तत्काल प्रतिक्रिया देने से रोका। जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं मेल पर जब आप भेजते हैं, अब इसकी एनालिसिस करें, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज एट ऑल, इसे आप बिल्कुल अन्यथा न ले। मैं आपको मालूम है कि जो आसपास की घटनाएं होती हैं उन्हीं को लेकर के बातचीत करना ज्यादा पसंद करता हूं दोस्तों, क्योंकि वो बड़ी प्रैक्टिकल चीजें हमें बताती हैं और उनका समाधान भी प्रैक्टिकल तरीके से सुझाती हैं, क्योंकि मैं हवाओं में गार्डन बनाने में विश्वास नहीं रखता हूं। फ्रेंड्स, मेल कितने शब्दों का होता है, कितनी पंक्तियों का होता है, इस पर सोचिए, और फिर यदि तुरंत किया जाता तो कितना वक्त उसमें लगता है, एक मिनट, दो मिनट, चार मिनट, पांच मिनट। चलिए, हो सकता है कि तुरंत आपके पास सुविधा नहीं है कि आप मेल कर सकें, लेकिन अगर हम कंप्यूटर के सामने बैठने में वक्त लगेगा या बाद में जाकर के करेंगे या जो कुछ भी, इन सारी चीजों को सोच करके आप सब अपने अपने तई ये प्रश्न पूछें और उसका उत्तर भी निकालने की कोशिश करें कि हमने इसका रिस्पांस तुरंत क्यों नहीं दिया, तुरंत रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया। मित्रों, ये वो चीज है जो आपको आपकी कमजोरी की एकदम जो गहराई होती है, जो मूल होता है, जो केंद्र होता है, वहां तक ले जाएगी। और मुझे लगता है कि चाहे हमें बड़ा काम करना हो या छोटा काम करना हो, अपनी कमजोरियों के केंद्र तक अगर हम पहुंच जाते हैं तो हम उन कमजोरियों से मुक्ति पा जाते हैं। होता यह है कि जब तक हम उसके मूल में नहीं पहुंचते तो हमारी जो कोशिशें होती हैं उसको दूर करने के लिए, जो हमारे प्रयास होते हैं, एफर्ट होते हैं, वो बड़े सुपरफिशियल लेवल पर रह जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि ये जो मैंने पौधा लगाया था और इसके इस पौधे के पत्ते मुरझा रहे हैं, इनमें उतनी चमक नहीं आ रही है, तो उसके लिए आप तरीका ये निकालते हैं कि एक एक पत्ते को धोते हैं या उनको पोंछते हैं कि इसमें चमक आ जाएगी। थोड़ी देर के लिए चमक आ भी जाएगी, नो डाउट, आप करके देखिए, लगेगा कि पत्ते में चमक हो गई, लेकिन अगले दिन या उसके अगले दिन फिर से उस पर धूल जमी हुई मिलेगी और बल्कि उस वो पहले से ज्यादा मुरझा चुके होंगे। इस पत्ते के मुरझाने में के मूल में क्या है? इस पत्ते के मुरझाने के मूल में यह बात है कि उन पत्तों को सही पोषण नहीं मिल पा रहा है। और पत्तों को सही पोषण क्यों नहीं मिल पा रहा है, जब आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे तो उत्तर आपको मिल जाएगा कि या तो उस पौधों की जड़ों में पानी नहीं है, और अगर पानी है तो खाद नहीं है, अगर पानी और खाद दोनों है तो हो सकता है कि कोई बीमारी लग गई हो जड़ों में या कहीं और कुछ हो गया हो। तो जब आप फिर उसको पकड़ेंगे तो फिर उसका समाधान ढूंढेंगे और इसके बाद फिर आपको पत्तों को पोंछना नहीं पड़ेगा, आप उसका उपाय कर देंगे और पत्ते हरे भरे हो जाएंगे, पत्ते ताजे और टटके हो जाएंगे। तो ये जो मूल तक पहुंचने की कोशिश होती है फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये थोड़ी सी दुखदाई होती है, थोड़ी सी तकलीफ दे होती है। तकलीफ दे दो मायनों में होती है। पहली बात तो यह है कि हम इतने क्वेश्चंस करें और क्वेश्चंस करके फिर उनके आंसर ढूंढें और आंसर से फिर हम उस पर क्वेश्चंस करें, तो एक तरह से सीरीज ऑफ क्वेश्चंस एंड सीरीज ऑफ आंसर बनते चले जाते हैं। अब लगता है कि यार ये जद्दोजहद कौन करे, क्योंकि दिमाग तो जद्दोजहद से घबराता है, क्योंकि यही तो दिमाग की मेहनत है। जैसे हम शरीर से मेहनत करने में घबराते हैं और इसी का नतीजा है कि अब रोड पर से साइकिलें गायब हो चुकी हैं, क्योंकि साइकिल चलाने में मेहनत होती है। तो शरीर भी मेहनत करने से घबराता है और बट नेचुरल है कि दिमाग भी मेहनत करने से घबराता है, और दिमाग की मेहनत तो सोचने में होती है कि वो किसी चीज के बारे में विचार कर रहा हो। तो हम इस मेहनत से बचना चाहते हैं, ये हमारा सबसे पहला रीजन होता है। दूसरा रीजन होता है, हम अपने प्रति सब हर कोई बड़े बड़े कोमलता का भाव रखते हैं। हम मान करके चलते हैं कि हम सही हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही है, हम जो सोच रहे हैं वो सही है, हमारी यही आदत है, हमको यही सूट करता है, दूसरे गलत हैं, जो कुछ भी कह लीजिए। यानी कि हम अपने, चाहे वो हमारे सही विचार हों या गलत विचार हों, हमारे सही व्यवहार हों या गलत व्यवहार हों, हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। और जब हम उनकी रक्षा करते हैं तो बट नेचुरल है कि फिर हम उसे बनाए रखना चाहते हैं। रक्षा कर रहे हैं वो बनी ही रहेंगी, और जब ये बनी ही रहेंगी तो आप ये मुझे बताएं कि फिर उस संभावना कहां है, उस ग्रोथ की संभावना कहां है, उस विकास की संभावना, उस उन्नति की संभावना, उस उपलब्धि की संभावना कहां है, उसके लिए इस कहां स्पेस है। क्योंकि देखिए, मैं अभी जो हूं वो तो हूं, और अभी मैं जो हूं, मैं कम से कम इस बात को मानता हूं दोस्तों, मैं वही हूं जो मुझे होना चाहिए। मुझे इस बारे में कहीं कोई रत्ती भर भी न तो अफसोस है और न संदेह है। मैं अभी वही हूं जो मुझे होना चाहिए, जो मैं कर रहा हूं, जिस तरीके से मैं सोचता हूं, मैं उसी के अनुकूल बना हुआ हूं। अब मैं इससे कुछ बेहतर बनना चाह रहा हूं, बेहतर करना चाह रहा हूं, यानी कि वो संभावना है, वो मुझे दिखाई दे रही है कि नहीं, मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, मुझे अच्छा बिजनेसमैन बनना है, मुझे अपनी इंडस्ट्री को बहुत अधिक बढ़ाना है, मुझे अपने खेतों से उत्पादन बढ़ाना है, या मुझे अपनी जिंदगी बेहतर करनी है, लोगों से मुझे अपने संबंध बहुत अच्छे बनाने हैं, मुझे अपने दिमाग में इनोवेशंस, नई नई चीजें लानी है, मुझे इंटेलेक्चुअल बनना है, मुझे बहुत अच्छी कविता लिखनी, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि वो संभावना है। वो संभावना यथार्थ में बदलेगी कैसे, वो जो पॉसिबिलिटी है वो रियलिटी में कैसे कन्वर्ट होगी? वो पॉसिबिलिटी रियलिटी में तभी कन्वर्ट होगी जब दो चीजें हो। पहली तो ये है कि उस पॉसिबिलिटी के कन्वर्शन में जो मेरे अपने सोच, व्यक्तित्व और एक्शन की जो रुकावटें आ रही हैं, मैं उन रुकावटों को दूर करूं, और यह अपने निर्मम विश्लेषण के द्वारा ही दूर हो सकती है। मैं वर्ड रिपीट कर रहा हूं, निर्मम विश्लेषण। सिर्फ विश्लेषण नहीं, सहला करके थप्पड़ मारना नहीं, निर्ममता के साथ, जैसे कि कोई ऑपरेशन किया जा रहा हो, धारदार चाकू से ऑपरेशन किया जा रहा हो। पहला तो यह होगा, और दूसरी चीज यह होगा कि जो उसके लिए किया जाना चाहिए, जो उसके लिए जो गुण लेने, गुण हमारे, वर्चूज जो हमारे अंदर आने चाहिए, वो वर्चूज को मैं इंबाइब करूं, अपने अंदर शामिल करूं, तो कमजोरियों से छुटकारा पाऊं, और जो उसके लिए किया जाना चाहिए उन गुणों को अपने अंदर शामिल करूं, तो ये चीजें मुझे बदल देंगी। और जब मैं बदल जाऊंगा तो फिर मेरे आसपास की सारी चीजें बदल जाएंगी, और मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा जो संभावनाओं के माध्यम से या संभावनाओं के रूप में मैंने सोच रखा है, बात बन जाएगी। मित्रों, आप लोग करके देखिए, पहले भी एकाध दो ऑडियो में मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने इस ताकत का उल्लेख किया था जिसे मैं तत्काल का जादू या तुरंत का जादू कहता हूं, कि आप अगर किसी काम को कर सकते हैं तो उसे तुरंत करिए। आप देखेंगे कि इससे आपकी मानसिकता की जकड़न टूटेगी, फिजिकली भी जो जकड़न होती है वो टूटेगी, और धीरे धीरे आपकी आदत पड़ती चली जाएगी कि नहीं, इसको तुरंत करो, इसको तुरंत करो, इसको तुरंत करो। अगर कहीं फोन भी करना है तो टालो मत कि ठीक है एक घंटे बाद कर लेंगे, यार ऐसी क्या मुसीबत है। नो, आदत में हो जाना चाहिए कि अगर हम कर सकते हैं तो इसको तुरंत करें, और फिर आप देखेंगे कि आप कितना सारा काम कर ले रहे हैं, फिर आपको समय की कमी की शिकायत नहीं रह जाएगी, आपको यह भी शिकायत नहीं रह जाएगी कि मैं ये नहीं कर पाया। और फिर जब करेंगे तो सीधी सी बात है, आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे, और जिंदगी यही है। हमारी सारी कोशिशें सिर्फ इसीलिए होती हैं, इसी तरीके से होती हैं कि हम कैसे अपने आप को दूसरों से आगे ले जा पाते हैं। तो मित्रों, मेरे इस बात पर आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इस राय पर थोड़ा विचार कीजिएगा, और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करके देखिए, आप लोगों को मजा आए तो इसको कंटिन्यू कीजिए, फायदा मिले तो इसको कंटिन्यू कीजिए, और नहीं मजा आए तो ड्रॉप कर दीजिए। लेकिन एक बार करने में हर्ज क्या है, क्योंकि इसमें कोई पैसे की मांग नहीं है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कैलिबर नहीं चाहिए, इसके लिए कोई आपको अलग से समय नहीं चाहिए, लेकिन मजेदार अनुभव रहेगा, मजेदार प्रयोग है, करके देखिए और फिर मुझे बताइए कि आपके परिणाम क्या रहे हैं। अगर सब असफल होंगे तो फिर मैं अपने सिद्धांत को ड्रॉप कर दूंगा, इसमें मुझे जरा जरा भी वक्त ऐसा करने में नहीं लगेगा। दोस्तों, अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। सच पूछिए फ्रेंड्स, तो कल की जो आकाशवाणी की खबरें हैं उसमें सबसे बड़ी खबर तो फेडरल बैंक की ही है, और फेडरल बैंक के बारे में मुझे मेल भी मिले हैं कि सर इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए और ये समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी खबर थी अरुणाचल प्रदेश में जो असेंबली में जो भी मामला हुआ है उसके बारे में। तो दोस्तों, खासकर अरुणाचल प्रदेश के असेंबली में जो भी मामला हुआ, स्पीकर को हटाया गया, महाभियोग लाया गया, CM को हटाया गया, वो सारे के सारे घटनाक्रम हैं, और आप देख रहे थे कि किस तरह से एक अशोभनीय या संवैधानिक सी स्थिति आती चली जा रही थी, और फिर बाद में हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वो जो भी राजनीतिक घटनाक्रम थे वो शांत हुए हैं, और अब देखते हैं कि क्या होता है। अब आप देख रहे हैं कि हम लोग कुछ दिनों से, आप भी वाच कर रहे होंगे कि लगातार हर मामले में, चाहे वो पॉलिटिकल मामला हो या असेंबली तक का मामला हो, या ब्यूरोक्रेट्स न कहें संवैधानिक पदों की नियुक्ति का मामला हो, खासकर जिसमें सीधे सीधे जुडिशरी जस्टिस आता है वहां तो फिर कोर्ट होती ही है, फिर चाहे हमारे पर्यावरण को बचाने का मामला हो, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पिछले कुछ दिनों में कोर्ट की जो एक्टिविटीज है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की एक्टिविटीज है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो मित्रों, ये जो कोर्ट की एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट अपनी तरफ से घुसपैठ कर रहा है। अरुणाचल के मामले में भी उनके सामने याचिका गई है, तब उन्होंने ऐसा किया है। लोकायुक्त के मामले में भी कल देखिए आप, इसके बारे में मैं दूरदर्शन पर कल डिबेट, रात के करीब 10:15 बजे इस पर डिबेट आ रहे थे, वो डिबेट मैंने सुना, जिसमें जस्टिस भी थे और एडवोकेट्स भी थे और पार्टी लीडर्स पॉलिटिशियंस भी थे। उसको सुनने के बाद यही लगा कि कोर्ट ने कई बार यूपी सरकार को ये मौका दिया, टाइम दिया कि आप 6 महीने में अपॉइंट कीजिए, 3 महीने में अपॉइंट कीजिए, 2-3 बार वक्त देने के बाद भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकी, और ऐसी स्थिति में फिर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करके वहां लोकायुक्त की नियुक्ति करनी पड़ी। जैसे अब असेंबली के मामले को ही अगर आप देखें, तो असेंबली का मामला एक ऐसा मामला था जिसमें हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो उस मामले को बड़े आराम से आपस में निपटा सकते थे। डेमोक्रेसी में विपक्ष रहेगी ही, विपक्ष के बिना डेमोक्रेसी रहती ही नहीं है, और विपक्ष का काम ही होता है कि एक निगरानी रखना सत्ता पक्ष के ऊपर। तो वो आपस में, और फिर स्पीकर है, स्पीकर तो सच पूछे तो पूरे हाउस को चलाने वाले होते हैं, उनके पास अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी भी होती है, उनके अपने रूल्स रेगुलेशंस भी होते हैं, लेकिन जब ये सारे तकनीकी या सारे कोशिशें फेल हो जाते हैं, जब सिस्टम फेल कर जाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर अंतिम जो शरण दिखाई देती है वो फिर एक जुडिशरी ही होता है। तो आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में लगातार जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, या कह लीजिए जुडिशियल की जो एक्टिविटीज हैं, उनके फैसले हैं, उनके जो हस्तक्षेप हैं, उनकी खबरें AIR न्यूज में काफी स्थान पा रही हैं और बहुत ही प्रोमिनेंट स्थान उनको मिल रहा है। मित्रों, ये शो करता है कि ये एक तरफ तो ठीक है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म का आप नाम दे सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी शो कर रहा है कि किस तरह से हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है लगातार वीक होता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं ये इसको भी शो करता है। तो ये कुछ सोचने के पॉइंट्स हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या किया जाना चाहिए, इन सब को लेकर के आप लोग विचार करें, और इन पर आपको लगातार अखबारों में एडिटोरियल कमेंट्स के रूप में और आर्टिकल्स के रूप में पढ़ने को मिल भी रहे होंगे, और लेकिन इस पर आपको अपना स्टैंड बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। कल मैं जो न्यूज सुन रहा था मित्रों, जो डिस्कशन सुन रहा था, खासकर लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले को लेकर के, तो उसमें संविधान के अनुच्छेद 142 का जिक्र आया था, और खासकर अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की है, तो उसमें उन्होंने क्लियरली इस बात को मेंशन किया है कि अनुच्छेद 142 के अंतर्गत ये कदम उठाया गया है। एक अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के अधिकार देता है। तो डिबेट में एक ये भी सवाल उठ रहा था कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशंस को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, अल्टीमेटली इस तरह के अधिकार दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए। कुछ लोग स्वाभाविक तौर पर इस तरह के अधिकारों को दिए जाने के अगेंस्ट थे और कुछ लोग इस तरह के अधिकारों को दिए जाने के पक्ष में भी थे, और ऐसा तो अक्सर होता ही है और यही तो डिबेट की खूबसूरती भी होती है। तो मित्रों, एक जो अनुच्छेद 142 जो है, मुझे लगता है कि इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी ले लेना चाहिए कि ये क्या है, कैसे है, कितनी बार उपयोग किया गया, प्लस माइनस इसके क्या हैं, तो उस पर आपकी थोड़ी सी पकड़ बन जानी चाहिए। फ्रेंड्स, जो दूसरी खबर थी वो फेडरल बैंक की खबर थी और मैं समझता हूं कि ये एक इंपॉर्टेंट खबर है। देखिए, हमारे लिए फेडरल बैंक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो फेडरल बैंक का जो स्टेप है, जो उसने डिसीजन लिया है, उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, जहां तक मैं समझता हूं कि मेरे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं, क्लास के स्टूडेंट्स को शायद फेडरल बैंक के इस स्टेप्स को समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, और फिर अखबारों में जो कुछ भी आ रहा है कि इसका भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मुझे विश्वास है कि वो इसे भी समझ पा रहे होंगे। और सच पूछिए तो मैं अपने तीनों बैचेस के स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अभी स्टेटमेंट मैंने दिया कि उन्हें समझने में आसानी हुई होगी या आसानी नहीं भी हुई होगी, तो थोड़ी सी मेहनत करने के बाद वे इसको समझ गए होंगे। तो ये मैं कितना सही कह रहा हूं, कितना गलत कह रहा हूं, कि प्लीज मुझे आप सब ईमेल के जरिए बताएं कि मेरा कहना सही है या सही नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि इकोनॉमिक्स में जिस तरह से यहां आप देखते हैं कि 6, 7 या 8 क्लासेस उसकी होती हैं और इकोनॉमिक्स की बेसिक्स समझाने की आपको कोशिश की जाती है, ताकि आप वो अच्छे तरीके से जो भी फिर घटनाएं हों इकोनॉमिक के फील्ड में, उन्हें बहुत आराम से समझ लें। तो मैं जानना ये चाहता हूं कि वो जो आपको बताया गया है वो वास्तव में कितना कारगर हो रहा है, और अगर कारगर नहीं हो रहा है तो फिर मुझे अपने और बताने के तरीके के बारे में सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, फिर मैं उसे रिवाइज भी कर सकूंगा। तो प्लीज आगे आने वाले जो बैचेज हैं उनकी सुविधा के लिए आप इतनी तकलीफ करें कि मुझे बताएं कि आप सब समझ पाए हैं या नहीं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो इसको नहीं समझ पाए हैं या जो क्लासेस में नहीं भी आए हैं, उनके लिए मैं थोड़ी सी आपको इकोनॉमिक्स की, यहां खासकर फेडरल बैंक को लेकर के, कुछ बेसिक्स की चर्चा कर रहा हूं। मित्रों, जैसे कि एक खबर है, खबर क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कि फेडरल बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। राइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। पहले 0.25% था और उसकी जगह पर अब उन्होंने 0.25% और बढ़ा दिया, यानी कि 0.5% हो गया, यानी कि आधा परसेंट ब्याज की दर उन्होंने, फेडरल बैंक ने कर दी। फेडरल बैंक यानी कि अमेरिका का रिजर्व बैंक कह लीजिए, वो वहां का केंद्रीय बैंक है। हर देश का अपना एक प्रोमिनेंट सेंट्रल बैंक होता है और जो फिर बाकी बैंकों को कंट्रोल करता है और सरकार की जो मौद्रिक संबंधी मॉनेटरी पॉलिसीज हैं उनके बारे में वो डिसीजन लेता है। तो ये फेडरल बैंक ने किया, ये एक घटना है। अब केवल आपको लिंक करते चले जाना है कि अब इनके क्या इंपैक्ट होंगे। जैसे जो स्टूडेंट्स क्लास में आए थे वो थोड़ा सा अगर याद करने की कोशिश करें, तो मैंने उनको बैंकिंग सिस्टम को बड़े एलोबरेट किया था विस्तार के साथ कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से क्या होगा। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, एग्जिट आंकड़े के आधार पर नहीं है, कि मान लीजिए कि मैं पहले फेडरल बैंक से $1 करोड़ अपने इंडस्ट्री के लिए कर्ज लेता हूं। फेडरल बैंक से मैंने $1 करोड़ का कर्ज लिया और उस $1 करोड़ के बदले में मुझे $5 लाख हर साल इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ता था, ब्याज के रूप में देना पड़ता था। $1 करोड़ के बदले में $5 लाख देने पड़ते थे ब्याज के रूप में। अब उन्होंने बढ़ा करके रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल कर दिया, मतलब 0.25 था तो उसको 0.5 कर दिया, यानी कि डबल कर दिया। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं अब बैंक से $1 करोड़ लेता हूं, जो मैं पहले भी लेता था, तो पहले मुझे $1 करोड़ के बदले में $5 लाख देने पड़ते थे ब्याज के रूप में, अब मुझे ब्याज के रूप में $10 लाख देने पड़ेंगे। यही हुआ, इसको सिंप्लीफाई करते जाइए आप। अब वो जब $10 लाख देने पड़ेंगे तो अब क्या होगा, मतलब आप केवल लिंक भर पकड़ते चले जाइए। तो सीधी सी बात है कि लोग, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि फेडरल बैंक से कर्ज लेना कम कर देंगे क्योंकि अब उन्हें ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा होगा, पहली बात। दूसरी बात, याद रखें कि अगर फेडरल बैंक ने ये कहा है कि हम आपसे ज्यादा ब्याज लेंगे, तो स्वाभाविक रूप से अगर मैं फेडरल बैंक में अगर अपना पैसा जमा करता हूं, तो मान लीजिए कि जब फेडरल बैंक दूसरों से 0.25% ब्याज पर दूसरों को ऋण देती थी, तो जो डिपॉजिट दूसरों से ले रही होगी तो वो थोड़ा सा कम में ले रही होगी, मान लीजिए कि 0.2 में ले रही होगी, 0.2। तो अब चूंकि वहां 0.5 कर दिया है उसने ऋण देने पर जो ब्याज लेगी, तो यहां डिपॉजिट पर भी वो कुछ ना कुछ बढ़ाएगी। तो अभी तक वो डिपॉजिट पर देती थी 0.2 और अब वो डिपॉजिट पर देगी 0.4, राइट? तो अब मैं जो पैसा, मुझे लगता था कि यार अमेरिकन बैंक में रखने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, तो उस पैसे को मैं इंडिया भेज दूं तो वहां मुझे ज्यादा फायदा मिल जाएगा, तो उसने इंडिया भेज दिया था उस समय। और अब जबकि फेडरल बैंक ने बढ़ा दिया है, तो उसको लग रहा है कि यार मैं अब इंडिया का पैसा निकाल करके अपने ही बैंक में रख दूं, क्योंकि अब तो मुझे यहां डबल इंटरेस्ट मिलेगा। पहली बात ये क्लियर हो गई होगी, मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा उलझाने वाली भाषा में से मैं बचने की कोशिश कर रहा हूं, कितना बच पा रहा हूं मैं नहीं जानता। तो अब स्वाभाविक तौर पर वो अपना पैसा निकालेंगे, जो कहा जा रहा है कि इंडियन मार्केट से पैसा निकलेगा। दूसरा क्या होगा कि अगर फेडरल बैंक 0.5% पर दे रही है, तो अब मैं अपना पैसा निकाल करके और इस पैसे को सीधे मैं भी वहां के किसी इंडस्ट्री को दे सकता हूं, तो वो मुझे दे देंगे, वो मुझे भी हो सकता है कि 0.45% में दे दें, ले लें मेरा पैसा, तो वहां भी मैं उसको इन्वेस्ट कर सकता हूं। क्योंकि देखिए बैंक में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे सेफेस्ट होता है, मतलब उसमें आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता, तो आप सोचते हैं कि हम ऐसा करें। तो मित्रों पहली बात तो ये है। तो अगर हमारे यहां से पैसा निकलना शुरू हो जाएगा, हमारे मार्केट से बाहर जाने लगेगा, तो फिर एक इंपैक्ट ये पड़ेगा कि हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व है वो कम हो जाएगा। फिर ये भी पड़ेगा कि जब लोग पैसा निकालने लगेंगे तो हमारे शेयर की मांग कम हो जाएगी, वो शेयर बेचेंगे, उन्होंने मान लीजिए शेयर में पैसा लगाया हुआ है, तो अब शेयर बेच बेच करके अपना पैसा निकालेंगे, तो शेयर के, चूंकि शेयर की सप्लाई बढ़ जाएगी तो शेयर मार्केट गिर जाएगा। हालांकि आपने देखा कि कल शेयर मार्केट बढ़ा है। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स इस पैटर्न पर काम नहीं करता, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। तीसरी चीज क्या होगी कि अब ये जो पैसा निकालेंगे, जो विदेशी पैसा निकालेंगे, अमेरिका अगर पैसा निकालेगा तो उसको किस में पैसा चाहिए? डॉलर में पैसा चाहिए। अब डॉलर की मांग बढ़ेगी क्योंकि उसको डॉलर चाहिए। जब डॉलर की मांग बढ़ेगी तो पता लगा कि रुपए की कीमत गिर रही है क्योंकि डॉलर की मांग बढ़ रही है। डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी को आप अप्लाई कर दीजिए, तो ऐसे में रुपए की कीमत कम होगी। लेकिन कल आप देख रहे हैं कि रुपए की कीमत भी थोड़ी सी बढ़ी है, तो मैं ये जानबूझ करके इसको बता रहा हूं, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो इमीडिएट नहीं होता, मतलब बहुत लंबे सोच के तहत इकोनॉमी काम करती है। लंबी सोच क्या है मित्रों कि अमेरिका ने अभी बढ़ाना शुरू किया है, फेडरल तो यहीं तक नहीं रहेगा, वो आज का ही नहीं देख रहा, जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो केवल आज की ही बात को नहीं देख रहा, वो भविष्य की घटनाओं को भी देख रहा है। क्योंकि फेडरल बैंक का अभी तक का रिकॉर्ड रहा है अक्सर, अगर हम पिछले 20-21 साल में देखें, 15-20 साल में, कि अब उसने रेट बढ़ाने शुरू किए हैं, अब वो फिर रेट बढ़ाएगा, जो उनके फेडरल बैंक के जो हेड हैं उन्होंने ऐसा संकेत भी दिया है। जैसे मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं कि नवंबर 1998 से लेकर के मई 2000 तक, इतने दिनों में, मतलब ऑलमोस्ट कह लीजिए कि दो ढाई साल में वहां का जो फेडरल ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट थे 4.75 से बढ़ा करके 6.5 कर दिए थे। मतलब इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा है, 6.5 तक तो रहा है, और अभी तो 0.5 है, तो सोचिए कि अभी कितनी गुंजाइश है। और मजेदार बात है कि इस दौरान में इंडियन मार्केट 57% बढ़ा और यहां तक यूएस मार्केट अपने आप में 22% बढ़ा। तो ऐसा भी नहीं होता है कि साहब अगर फेडरल का बैंक ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है तो इंडियन मार्केट भी गिर जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है, उसमें बहुत से दूसरे रीजंस काम करते हैं। एक और आंकड़ा सुन लीजिए कि जून 2003 से लेकर के जून 2006 तक, 3 सालों में रिजर्व फेडरल बैंक ने जो अपने यहां उसके यहां रेट 1% था उसको बढ़ाकर के 5.25% तक ले गया। वो सोचिए 1% से 5.25% तक ले गया। इन 3 सालों के दौरान इंडियन मार्केट 194% बढ़ा, मतलब डबल सा हो गया, समझ 200% डबल का 200% बढ़ा, और यूएस मार्केट 30% बढ़ा। तो मित्रों उसी तरीके से काम नहीं करता है, लेकिन सामान्यतया जो कैलकुलेशन होता है, जो अभी आप अखबारों में पढ़ेंगे तो उसमें आपको यही दो तीन चीजें पढ़ने को मिलेंगी। नंबर एक, कि भारत के शेयर मार्केट पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, भारत का शेयर मार्केट घटेगा। फिर आपको है कि रुपी की कीमत कम होगी, रुपया कमजोर होगा, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो घटेगा क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे क्योंकि डॉलर महंगा हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें आपको मिलेंगी, हमारा फॉरेन रिजर्व कम हो जाएगा, ये चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इकोनॉमी लंबे हिसाब से काम करती है, लेकिन चीजें ज्यों की त्यों ऐसी ही नहीं होती हैं। अब मैं थोड़ा सा जवाब आपको देता हूं दोस्तों, जो मैंने कहा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है तो जो अमेरिकन हैं, जो वहां उद्योगपति हैं, वो बैंक से ऋण क्यों लेंगे। आपने एक न्यूज सुनी है, पढ़ी भी है कि फेडरल बैंक ने इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है कि वहां की जो इकोनॉमी है उसमें ताकत आने लगी है। वो आपको मालूम है कि इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा था, लेकिन अब वहां की अर्थव्यवस्था में मजबूती आ गई है, डिमांड बढ़ गई है चीजों की, बेरोजगारी की दर कम हुई है। तो ऐसी स्थिति, जब बेरोजगारी कम हुई है इसका मतलब है कि लोगों के पास अब अर्निंग आने लगी है, जब अर्निंग आएगी तो वो कंजम्पशन करेंगे, वो उनको चीजें चाहिए। जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो कंजम्पशन उस सब चीजों की आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, जब डिमांड बढ़ रही है तो आपको चीजों की सप्लाई करनी पड़ेगी। तो चीजों की सप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए, और वो कैपिटल आप कहां से लेंगे, वो आप बैंक से लेंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है तो लोग बैंक से पैसा लेना बंद कर देंगे। अगर उनको लगे कि हम यहां से पैसा लेकर के ज्यादा कमाई कर सकते हैं तो वो ऐसा करेंगे, वो रेट ऑफ बैंक से पैसा लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि बैंक के मन में आया और उसने सीधे सीधे बढ़ा दिया, जो भी मर्जी हुई, वो सारे फैक्टर्स देख करके बढ़ाता है। क्योंकि वो बैंक का काम ये केवल ये नहीं कि अपने पास पैसा इकट्ठा रखे, बैंक का काम ये कि पैसा इकट्ठा करे और फिर दूसरों को पैसा दे ताकि वो इकोनॉमी की पाइपलाइन में आकर के पूरी इकोनॉमी को बढ़ा सके। तो मित्रों, ये मैंने थोड़ी सी आपको बेसिक्स बताई हैं और इसको लेकर के काफी प्रेस क्लिपिंग्स, 3-4 प्रेस क्लिपिंग्स मैं आपको नॉलेज सेंटर पर प्रोवाइड कर रहा हूं, ये आप देख लीजिएगा। और इसके साथ ही मैं 4-5 और आपको प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो आप सब देख लेंगे। उन पर मैं आपसे ज्यादा बातचीत करने के लिए वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन चीजें बहुत आसान है, मैंने अंडरलाइन कर दी है, आप सब उसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं अंतिम चरण ईमेल पर। तो सबसे पहले तो मैं गोपाल कुमार समस्तीपुर बिहार से हैं, उनको बधाई दे दूं कि उन्होंने लिखा है कि रेलवे जूनियर इंजीनियर इलाहाबाद वाले में उनका सिलेक्शन हो गया है। तो गोपाल, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह से जीवराज सिंह का जयपुर में है, उनका बैंकिंग में हो गया है, तो आप दोनों को बहुत बधाई और अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी। दोस्तों, बहुत से मेल आप लोगों के मिले हैं और उसमें खासकर मंडे के आडियो को लेकर के थे, तो मंडे के आडियो के बारे में तो हम लोगों ने अब ये फैसला कर ही लिया है कि कुछ समय तक हम लोग इसे चला करके देखते हैं, फिर आप लोगों की जैसी प्रतिक्रिया होगी उसके आधार पर आगे का निर्धारण करेंगे। तो इस बार भी जो आपको मंडे का आडियो मिलेगा वो थोड़ा सा अलग तरीके का होगा, जो उसी के कंटिन्यूएशन में होगा। तो आप सबको बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी में कुछ दोस्तों के नाम हैं, गोविंद गौड़ जो जौनपुर से हैं, मीनू पांडे हैदराबाद से हैं, ऋतु अग्रवाल कोरिया छत्तीसगढ़ से हैं, रामू बर्मन नागौन असम से हैं, युवराज सिंह नई दिल्ली से हैं, विपुल कुमार गुप्ता वाराणसी से हैं, रोहित गोयल, सौरभ वर्मा लखनऊ से हैं, गौरव धीमान चंडीगढ़ से हैं, रघुवीर शाह सीतामढ़ी बिहार से हैं और रजत बोलपुर से हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इन मेल्स में जो बेस्ट मेल्स में कहूं तो वो सौरभ वर्मा लखनऊ का है। तो सौरभ, इसके इस सफलता के लिए तुमको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं आप लोगों से 2 दिन के इजाजत लेना चाहूंगा, सोमवार को आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबके प्रति मेरी हार्दिक शुभकामनाएं कि ये जो 2 दिन हैं, ये दो दिन आपके लिए बड़े उपयोगी सिद्ध हों, बहुत ही ऊर्जावान भी आपके लिए ये सिद्ध हों, ताकि सोमवार को एक नए जोश खरोश और एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग मिलें और फिर अपने रिमेनिंग 5 डेज का अधिकतम इस्तेमाल करें। दोस्तों, अब आप सब मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।